یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 427.
8th of February 1998, rise in the morning, Baitul Khayal at Richmond Jamaat Khana of Vancouver. Yaadi madad. Durdesh Durdesh Thi Ayo Vanjaro Shamil Soda Kijiye Ji Achhi Achhi Karni Kamao Mere Bhai To Agan Na Baale Pavan Na Dode Pani Na Bode Raja Bhi Dand Na Dijiye امام پر صلوات پڑھو دین دارو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و خیام. جماعت خانے میں پرسو شکروار کو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میں سپریچول اویرنس کے اوپر وائز کروں گا. ہمارا یہ جو مذہب ہے اسماعیلی دین اسلام کا فرقہ ہے، رسول اکرم کے فرمان کے حساب سے 73 سیکٹس ہیں اسلام کے اندر، یعنی 73 فرقے کہ جو اپنے خیال سے، اپنے طریقے سے، اپنے سمجھ سے دین پر یعنی عمل کرتے ہیں. اس میں ایک ہی یہ فرقہ ہے اسماعیلی مذہب کہ جس کے اندر روحانیت اور باطنی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہسٹورینز نے ہمارا نام رکھ دیا باطنیہ فرقہ. ہمارا نام بہت پرانا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کے بعد یہ فرقہ کا نام اس طرح سے پڑ گیا کہ جب حضرت اسماعیل ہمارے چھٹے امام، سکسٹھ امام تھے، ان کو ہم نے فالو کیا، ہمارا نام اسماعیلی پڑا اور ساتھ ساتھ باطنیہ پڑا. باطنیہ نام زیادہ تر پہ حضرت امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو اسماعیلی دائی اور مشنریز تھے، انہوں نے اس طریقے سے دین اسلام کو اسماعیلی طریقے سے پیش کیا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا نام باطنیہ پڑ گیا. باطنیہ انگلش کے اندر آپ ٹرانسلیشن کرو اس کا تو مطلب یہ ہے ایسوٹیرک طریقے کے اوپر چلنے والے، روحانی طریقے پہ چلنے والے. اسماعیلی مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوئے، اور وہ ایسا زمانہ تھا یہ مولانا امام وفی احمد کا. امام وفی احمد آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے آٹھویں امام تھے، امام محمد بن اسماعیل کے فرزند تھے. مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے دشمن بھی بہت ہو گئے. مرتضی علی اور مرتضی علی کی اولاد جو تھی ان کو مٹانے کے لیے بنی امیہ کے کہ جو معاویہ کا خاندان ہے، یزید کا خاندان ہے، ابو سفیان کا خاندان ہے، انہوں نے اہل بیت کو مٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن امام جعفر صادق کی حیات میں بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا، مٹ گئے. لیکن بھوت مرا تو پلید جاگا، بنی امیہ مٹ گئے تو بنی عباس کھڑے ہوئے. بنی امیہ ہمارے اہل بیت کے، بنی ہاشم کے وہ لوگ سگے نہیں تھے، لیکن بنی عباس جو تھے وہ ہمارے سگے ہوتے تھے، اور انہوں نے رشتہ داری کے اندر رہ کے ہمارے اماموں کے گھرانے کے ساتھ دشمنی شروع کی. اس لیے بہت دفعہ اسماعیلی لوگ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، اور خاص طور پہ امام اسماعیل علیہ السلام سے لے کے مولانا امام مہدی تک ہم لوگ لگ بھگ چھپے ہوئے تھے. تو یہ جو زمانے کا میں ذکر کرتا ہوں، امام وفی احمد، امام محمد بن اسماعیل اور امام وفی احمد کے فرزند مولانا امام تقی محمد، یہ سارا دور ستر کہلاتا ہے، یعنی پیریڈ آف کنسیلمنٹ، اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم اسماعیلی ہیں. مگر اس دور کے اندر ہی اسماعیلی مذہب کی قوت اور طاقت بہت بڑی. ہر وقت ہمارے جو جبات خانے یا مسجدیں تھیں وہ زمانے کے اندر، اس کے اندر مشنریوں کا، دائیوں کا یہی رجحان تھا، ولن تھی یہی کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف ایک دکھاوے کی چیز ہے، ٹیمپریری ہے، اور ہم کو وہاں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. ہمارا وطن یہ نہیں ہے، یہاں تو ہم ویپار کرنے آئے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ یورپ، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ویپار کرنے کے لیے، ہم بھی یہاں ویپار کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. یہ اویئرنیس کہ ہم یہاں ٹیمپریری ہیں، پرماننٹ نہیں ہے، یہ اسپرچولیزم ہے. امام وفی احمد کے زمانے کے اندر پانچ چھ ایسے لڑکے تھے جوان، جن کے دلوں کے اندر یہ وائزیں گھس گئیں کہ ہمارا طریقہ باطنی ہے، ہم اس دنیا کے اندر ٹیمپریری آئے ہیں، ہمارا اصل مکان وہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں، اور وہ مولا کے دربار کی بات ہے. یہ چیز ایسی خوشی کہ یہ لوگ عبادت میں زیادہ مشغول ہو گئے، اور آخر ان میں سے کسی ایک نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ادھر تو گڑبڑ بہت ہے دنیا کی، چلو ہم کسی جگہ جا کے تھوڑا دن گزارے اور عبادت کریں. اور انہوں نے کہا اچھا، بس یہ لوگ پہلے تو چھ جنے تھے لیکن بعد میں تھوڑے زیادہ ہو گئے. شہر کے باہر، مدینے کے باہر، ایک چھوٹی سے پہاڑی کے گفا میں، کیو میں جا کے انہوں نے عبادت شروع کر دی، تھوڑا کھانا پینا لے گئے. جب کھانا پینا ختم ہو گیا واپس آ گئے. مہینے دو مہینے کے بعد پھر ایسا خیال ہوا تو تھوڑا زیادہ کھانا لے کے یہ چلے گئے. بس یوں یہ لوگ آتے تھے جاتے تھے مہینے دو مہینے کے بعد، دو دو چار چار پانچ پانچ دن، اور پھر ایک دن ایسا ان کو لگ گیا کہ ایک ایک مہینہ تک ادھر رہتے تھے، دنیا سے دل ہٹتا گیا. گرمی ہوئے، گرمی کے سمر کے ٹائم میں وولن کے کپڑے پہنے، اور ونٹر آوے تو پتلے کاٹن کے کپڑے پہنے. یہ اپنے بدن کو تکلیف دے کے دنیا سے دل کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے. اس کو نارملی ہماری زبان کے اندر یا گنانوں کی بھاشا کے اندر ویراگ کہتے ہیں. ویراگ یعنی ڈیٹیچمنٹ آف دی ہارٹ، دنیا سے دل ہٹ جائے. ایک چیز ہے اٹیچمنٹ ہے دنیا سے، مال سے، دولت سے، بیوی بچوں سے، گھر بار سے دل لگا ہوا ایسا کہ نکلتا ہی نہیں، دھیان لگتا ہی نہیں، लेकिन जब ये डिटैचमेंट हो जाती है, हम जिसको वैराग कहते हैं, तो फिर वैराग में ये होता है कि ये सारी चीजों से दिल हट जाता है। क्या है, बीवी तो बीवी है जब तलक मौत है, या बीवी मर जावे तो हमारी सगपन खलास हुआ, शोहर मर गया, हस्बैंड मर गया तो सगपन खलास हुआ, बच्चों का बाप है मर गया तो सगपन खलास हुआ, बात तो सब मौत तक की है। ये समझना यही अवेयरनेस है कि हमारी दुनिया के अंदर जिंदगी कितनी, बहुत जिएंगे, बहुत जिएंगे, 100 बरस जिएंगे। विषमस कहते हैं 100 बरस लगी जीवन आखिर मरना हो ही, मौत तो है ही, कोई भी शख्स मौत से इनकार नहीं कर सकता। तो ये 6, 7, 8, 10 इन्होंने दुनिया से त्याग कर लिया, जवान थे, अभी तक शादियां नहीं हुई थी, जो कि हिस्ट्री में इस बात के लिए कुछ लिखा नहीं है, मगर इनकी उम्रों का हिसाब देख के ऐसा अंदाजा होता है, गेस वर्क होता है कि इन्होंने शादियां नहीं की, और बस यूं ही ये दुनिया से दिल हट गया। कुछ लोग इनके पांव पे चलने लगे, फॉलो किया, तो इन लोगों ने इस मंडली का, इस टोली का, इस ग्रुप का या मजलिस का नाम रख लिया इख्वानुस्सफा, साफ दिल वाले भाई। व्हाइट कपड़े पहने हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा गर्मी आवे तो वुलन कपड़े पहने, गर्मी से पसीना पसीना हो जावे, और इस पसीने से जो घबराहट होवे उसको ये लोग टॉलरेट करें, सहन करें। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ फिनेंस, खुद को दुख में डाल के अपनी टॉलरेंस को, बियरेंस को बढ़ाना। ये इख्वानुस्सफा इस्माइली थे, निकल गए, रस्ते से हट गए। रस्ते से क्यों हट गए, क्योंकि हमारे इस्माइली मजहब के इमामों ने हमको यह फरमाया है कि दुनिया का त्याग करके, यानी जाहरी तौर पे तुम अपना तमाम उसके साथ कनेक्शन तोड़ के और तुम इबादत बंदगी करो, ये तरीका हमारा नहीं है। दुनिया के अंदर रहो, दुनिया के दुख उठाओ, दुनिया की ड्यूटी पूरी करो। सबसे पहला रिश्ता सगपन मां बाप के साथ होता है, फिर उसको भाई बहन मिलते हैं, अगर मिले तो, जो पहला खुद का बच्चा होवे तो उसके भाई बहन उसके बाद आते हैं, लेकिन मात पिता, भाई बहन, बड़ा हुआ, शादी की, बीवी बच्चे हुए, दुनिया का ये जो सिलसिला खुदा ने बना रखा है वो इसलिए बना रखा है कि खुदा ताला की जो क्रिएशन है वो चालू रहे। हमारे मजहब के अंदर सिंगल रहना मना है, स्पिरिचुअली भी मना है। हमारे मजहब के अंदर अपने शरीर को दुख दे के इबादत करना मना है, क्योंकि खुदा ने ये बगीचा बनाया है, दुनिया इज ए गार्डन, गार्डन ऑफ गॉड, इसके अंदर फूल फल हैं, कांटे भी हैं, मड भी है, पानी भी है, अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं, दुख भी है, सुख भी है। तो हमें इस दुनिया के अंदर रहना है, इस तरह रहना है कि दिल मौला के साथ रहे और अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाए। हमें इस तरह नहीं रहना कि हम दुनिया के अंदर ऐसे घुस जाएं कि हमें मजहब का पता भी ना लगे, हमें मौत याद भी ना आवे, ये ऐसा तो नहीं रहना। हमें रहना है, हज़रत इमाम फरमाते हैं दोनों साइड अपनी पूरी करो और एक को दूसरे के बदले में छोड़ मत दो। तो ये लोग जो इख्वानुस्सफा थे जब ये गुजर गए, तो इनके पीछे जो लोग थे انہوں نے اپنا طریقہ رکھ دیا اور اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئے. تو اخوان الصفا کا جو سلسلہ تھا وہ اسماعیلی مذہب میں سے نکلا ضرور, مگر اسماعیلی مذہب میں ان کا کوئی حق نہیں تھا. یہ طریقہ کہ ہم اسماعیلی لوگ دنیا کماتے ہیں دین کے لیے, دنیا کماتے ہیں دین کے لیے, اس لیے کہ ہم عبادت کریں, رات کو اٹھ کے مولا کو یاد کریں, اور دن کو رات کی ہوئی بندگی کو ہم سنبھالیں, پروٹیکٹ کریں. کیونکہ رات کو جو ہم نے بندگی کی ہے روحانی ترقی کے لیے, روحانی اویئرنیس کے لیے, روحانی بخششیں پانے کے لیے, اس کی دشمنی دن کے وقت ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, منہ میں سے گلہ غیبت گندی باتیں کرتے ہیں, گندے وچار پیدا ہوتے ہیں, تیری میری ہوتی ہے, گناہ ہوتے ہیں. رات کو بندگی کرنی, دن کو گناہ کرنے. سلطان محمد شاہ فرمایا یہ تو شیطان کی بندگی ہے. آدمی کے دل میں ویراغ جو ہے نا وہ 24 گھنٹے رہنا چاہیے, ایسا کام نہ کروں کہ میری بندگی خراب ہو جائے, ایسا کام نہ کروں مولا ناراض ہو جائے. ایسا شخص جو اسماعیلی مذہب کے اندر تب باطنی طریقے پہ ہے, اس کا سب سے بڑا جو ایم ہے وہ امام زمان کو خوش کرنا ہے. یہ نور کب ملے؟ جب وہ خوش ہوئے. ہم اس کے نزدیک تب پہنچے جب ہم پوتر ہوئے. ہم گندے ہیں, بدن میں سے باس آتی ہے. یہاں میرا مطلب یہ ظاہری بدن نہیں, ہمارے من سے بھی باس نکلتی ہے. برے خیال والا آدمی جو ہوتا ہے اس کے بدن سے جو وائبریشن آتی ہے وہ بھی خراب اور گندی ہوتی ہے. خراب آدمی کے چہرے کے اوپر بھی ایک قسم کی خرابی ہوتی ہے, اس کے ہاؤ بھاؤ میں, بات چیت میں, چلن ہلن میں گند نظر آتا ہے, ڈرٹی ہوتا ہے. لیکن جو انسان پاک ہے, پوتر ہے, اس کے چہرے پہ ایک قسم کی رونق ہوتی ہے, نور ہوتا ہے. اس کی زبان کے اندر کبھی کوئی بری چیز نہیں نکلتی, اس کے کان بھی بری چیزیں سننے کے لیے تیار نہیں. ہم کو پیروں نے کہا کہ جہاں نندا ہوتی ہوئے اٹھ کے چلے جاؤ, کسی کی بدی برائی مت سنو. اسی پوترتا, پاکیزگی اور پیورٹی آف مائنڈ کا جو رستہ ہے وہ اسماعیلی مذہب یہ ہے. قرآن شریف میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہے, اخوان الصفا سے لگتی لگتی. وہ لوگ کے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ قرآن کے جو سورے ہیں نا, چیپٹرز 114 چیپٹر ہے, 114 چیپٹرز, اس میں ایک چیپٹر کا نام ہے الکہف. یہ الکہف خدا تعالی نے ایسا ہی کچھ دوستوں کی سٹوری کی ہے جیسے کہ اخوان الصفا کی. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ان اصحاب کہف کو. کہف پہاڑ کے اندر ایک جگہ کا نام تھا, کہف. ایسے ہی چند نوجوان تھے, فیملی والے تھے, بزنس مین تھے, کسی صوفی کی دوستی کے اندر ان کے دل کے اندر اویئرنیس پیدا ہو گئی اور یہ روحانی باتیں کرتے تھے. جب بھی ملے روحانی باتیں کریں. آہستہ آہستہ ان کے اندر سے بھی کسی نے یہ کہہ دیا, چلو نا یار 2-4 دن باہر جا کے وہاں جا کے آرام سے باتیں کریں, یہاں یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے دنیا کی. تو یہ اصحاب کہف قرآن شریف کی کمنٹری میں 6 آدمیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ 4 تھے کہ 6 تھے, لیکن کمنٹیٹرز نے ان کو 6 کا نام دیا ہے, تعداد دی ہے. ان کا ان میں سے ایک آدمی کا ایک کتا تھا. وہ زمانے کے اندر تو آدمی پاؤں سے چلتے تھے, تو یہ نکلے تو وہ کتا بھی اپنے مالک کے پیچھے چلا گیا. شہر کے باہر جا کے کسی پہاڑ کے درے میں وہاں یہ لوگ بیٹھے, باتیں چیتیں, مذہبی باتیں کریں, آنکھ بند کر کے عبادت میں بیٹھ جائیں. दो तीन दिन के बाद घर वापस आ जावे। यूं आते जाते आते जाते जाते ऐसा बन गया कि ये लोग फिर दो दो चार चार दिन की जगह एक एक महीना उधर रहने लग गए। कुछ और टाइम निकल गया तो दुनिया से सब छूट छाट के उधर पहुंच गए और इबादत में बैठ गए। ऐसा बैठे कि इबादत में बैठे बैठे इनकी रूह निकल गई और ये मर गए, गुजर गए। इर्द गिर्द कोई था नहीं। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है कि हवा से मिट्टी आती रही, रेत धूल आती रही और ये छे के छे आस्ते 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 उनका कुत्ता ये सब मिट्टी में दफन हो गए। सैकड़ों साल के बाद लोगों को इनका पता चला और खुदा ताला ने इसका जिक्र कुरान में करके कहा कि वो लोग के जो खुदा से प्यार करते हैं वो दुनिया से अपने दिल को उठा लेते हैं और दुनिया जो है वो किसी के साथ नहीं बनी। दुनिया के अंदर हमेशा दुख कौन देते हैं ज्यादा पता है? जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे सगे कुटुंबी हैं, जिसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हीं से हमको दुख मिलता है। बेटे से दुख मिले, बेटी से मिले, बीवी से मिले, शोहर से मिले, जो सगे कुटुंबी हैं वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हम जिससे यारी दोस्ती करते हैं कोई ऐसा मौका आ जाता है कि यार दोस्त भी दुश्मनी अगर नहीं करता तो छोड़ के चला जाता है। अपनों से ही इंसान का दिल टूटता है। इसलिए मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार ने इस दुनिया को नठारी स्त्री के तौर पे लिया है, दुनिया को औरत का रूप दिया है और कहा है नठारी स्त्री, दुख देने वाली, नाफरमानी करने वाली बीवी के जो शोहर की बात न माने, शोहर से प्यार न करे और दुख दे रहे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि ये नठारी स्त्री है, दुख देने वाली बीवी है। ऐसा ही दुख देने वाला शोहर समझ लो तो अपने ही लोग हमको दुख देते हैं। मुझे इस वक्त सत्वनी का एक पाठ याद आया। ऊपर हेडिंग है सत्वनी के 10 लाइनों में, यानी 10 पाठ है एक एक सिंगल लाइन का, फिर नीचे रेतुई की वरानी आती है, ये एक पेज है, इसको सत्वनी का एक पाठ कहते हैं। यानी 10 लाइनें पाठ की, एक रेतुई मुलासा चसाइया और 4 लाइनें फिर नीचे वरानी के, ये टोटल 14 लाइनों का एक पेज है और इसको एक पाठ कहते हैं। तो ऊपर लिखा है दुनिया की बेवफाई, ये हेडिंग है। फिर नीचे वरानी में ये लिखते हैं रे तू ही मेरा साचा साईया पियो जी तू ही। ऊपर दुनिया का जिक्र करते हैं। अब कहते हैं कि ये कन्या, यानी ये जो दुनिया है, ये एक एक लड़की है शादी करने के लायक। एक कन्या है अभागनी, ये लड़की बड़ी बदकिस्मत है, जिसे राखना लूणे राये रे भाई राखना लूणे राये। ये कन्या, ये दुनिया, ये लड़की बड़ी बदकिस्मत है, न इसे गरीब रख सकता है, राख कहते हैं गरीब से गरीब भिखारी को, न इसे राजा रख सकता है। क्यों? आंखें खोल कर देखिए, آئی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو نرک بھری سر پائے رے بھائی نرک بھری سر پائے. آنکھ کھول کر دیکھو اس کے باہر کے کپڑے بہت خوبصورت ہیں, اچھی لگتی ہے, لیکن گند سے بھری ہوئی ہے, سر سے پاؤں تک گند سے بھری ہوئی ہے. ایک ایسی خوبصورت لڑکی جس کو ہم دیکھتے ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہیں, درداگینے پہنے ہیں, لیکن اندر سارا بدن کوڑ کی بیماری سے گنداتا ہے, پیپ نکلتی پرو نکلتا ہے, ایسا پیر کہتے ہیں. یہ جو دنیا کی جو لڑکی روپ ہے, خوبصورت ہے, کھینچنے والی ہے, دل لبھانے والی ہے, لیکن اس کا بدن گند سے بھرا ہوا ہے. جب انسان کو حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے, اصل چیز وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں, خدا نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے, پیر کے اس گنان کے اندر کہ دور دیش تھی آیو ونزارو شامل سودا کیجیے. مولا نے ہم کو اپنا ایجنٹ بنا کے کہ جاؤ دنیا میں جا کے ویپار کر کے کمائی کر کے واپس آؤ, لیکن ہم سیٹ کا دیا ہوا جو انویسٹمنٹ کا پیسہ ہے اس کو ویر پھیر کے کدھر پھینک دیں گے, اور کوئی ویپار نہ کریں اور کریں تو نقصان ہی نقصان ہوئے, تو سیٹھ کو ہم کیا منہ دکھائیں. اور یہ سیٹھ ایسا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے ہم چھپ نہیں سکتے. ایک آدمی ادھر کینیڈا کے اندر کوئی ایسی کچھ آپت کر لے, ڈس آنےسٹی کر کے بھاگ جاوے, تو کسی ملک میں جا کے بیٹھ جاوے, مگر خدا تعالی کے خدائی میں سے کون سی جگہ ہے کہ جہاں خدا نہیں, وہ تو پکڑے گا, ہر جگہ پکڑے گا. جب انسان کو یہ اویئرنیس آتی ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے, اس کی بڑائی ہوں نکل جاتی, ایگو نکل جاتا ہے, پرائڈ نکل جاتا ہے, ہمبل بن جاتا ہے, بالکل ہمبل ہو جاتا ہے, نرم بن جاتا ہے. کسی نے گالی دی تو اٹھا لیا, ریٹیلیشن نہیں رہتی. دنیا کا بچہ ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, جیب کا سواد ہوتا ہے, لیکن آدمی کو 50-60 برس کی عمر کے بعد بھی اگر یہ جیب کا سواد ہی لگا رہے, مسالہ مرچ تیکھا چٹنی اچار آتما, ارے بھائی چھوڑو, ابھی تو چھوڑ دو, کیونکہ یہ چیزیں ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں, دماغ کو, نروس سسٹم کو خراب کرتی ہیں. عبادت والا جو آدمی ہے اور وہ جوان کے جو اپنی جوانی کی عمر سے اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ دنیا ایک ٹیمپریری ایبورڈ ہے اور ہم کو جانا ہے جہاں سے ہم واپس آئے ہیں, تو وہ آدمی خوش نصیب ہے کہ جن کو یہ سمجھ آ جائے. آدھی رات تک جاگنا, صبح 10 بجے تک سونا, اور کئی تو رات کو جاگتے ہیں, دن کو 12 بجے تک سوتے ہیں, 2 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں دوپہر کو, رات کا ڈنر ان کو 4 بجے ملتا ہے, ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو دنیا کے اندر انسان کی زندگی جو ڈیلی ہماری لائف ہے, کسی دن آرام سے بیٹھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے ان تمام چیزوں میں سے, یہ ناچ رنگ ڈانس وغیرہ کھانا پینا, اس میں سے ہمیں کیا ملا؟ بیماریاں ملی. میرے پاس بہت سے لوگ بھائی بہن آتے رہتے ہیں. ایک میری لڑکی آئی, یعنی کہ ایک عورت آئی, مجھے کہتی ہے باپا جی بہت دوائیاں کی ہیں لیکن میرے پیٹ کا درد نہیں جاتا, کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بس گیس بہت ہوتا ہے. میں ساری ایک صرف ایگزامپل دینے کی بات کر رہا ہوں, گیس بہت ہوتا ہے और खाना खाने के थोड़े टाइम के बाद दर्द होता है, कोई कहता है अल्सर है, कोई बोलता है ये है वो है। मैंने कहा देख बेटा तेरी एक बुरी आदत है, वो चेंज कर देवे सब ठीक हो जाएगा। कौन सी बुरी आदत बाबा जी? मैंने कहा तू लुकमा मुंह में डालती है, दो तीन दफा चबा के उतार लेती है, चबाती नहीं। मुझे बोलती है आपको कैसे पता लगा? मैंने बोला तेरी हालत से पता लगा, एक्शन का जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन से पता लगता है कि एक्शन क्या है, और एक्शन से पता लगता है कि रिएक्शन क्या है। मुझे बोलती है बात सच है। मैं बोला तेरा ये इलाज है कि आस्ते आस्ते खाओ, चबा चबा के खाओ, मुंह के अंदर जो रस है जिसको हम सलाइवा कहते हैं वो एक्चुअली खाने को 50% हजम करने की चीज है। तो अगर हम दुनिया की मोह ममता माया ऐश आराम जो कुछ भी दुनिया के अंदर है, ये तमाम चीजें बीमारियां पैदा करने वाली हैं। सिंपल अगर आदमी बन जाए, अच्छे ख्यालात हमें, वो लोग के हर वक्त जो जलते रहते हैं हसद में, उनकी चमड़ी सूख जाती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। वो लोग के जिनके दिल के अंदर बिल्कुल सुख चैन और रिलैक्सेशन है, किसी का बुरा नहीं करते, कुछ नहीं कहते, वो ऐसी बरस की उम्र भी जाएंगे तो भी उनका जो चेहरा ऐसा ही रहता है। ये तो जाहिर की बातें हैं। अंदर की बातों में ये है कि जो इबादत वाले लोग हैं उनके दिल के अंदर कोई दुख बाहर से आ नहीं सकता। इबादत वाले लोगों के दिल में बाहर का कोई दुख अंदर नहीं जा सकता। मौलाना हजर इमाम फरमाते हैं तुमको दुनिया के अंदर दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे, क्योंकि इबादत करने से जो ताकत आती है तो दुनिया के तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सॉल्व कर लेता है। फ्रस्ट्रेट नहीं होता इबादत करने वाला आदमी, इबादत करने वाला आदमी कभी भी निराश नहीं होता, उसके दिल के अंदर होप मिटती नहीं, वो तो हर वक्त खुशी रहता है और उसको तरीके भी आ जाते हैं। फिर वो अपने काम उसको सौंपता है कि जिससे बड़ा कोई नहीं, वो खुदा ताला को कहता है मौला ये मुसीबत का है कि तू जान है जी कम कर दे। इबादत वाला आदमी तो दुनिया के अंदर भी जन्नत में रहता है, भले कपड़े उसके अच्छे नहीं हैं, गरीब हैं, पांव से चलता है, मोटर नहीं है, लेकिन अंदर वह बादशाह की तरह है। उसके दिल के अंदर एक ऐसी रूहानी अजमत है, ऐसी खुशी है कि उसको दुनिया का कोई गम दुखी नहीं करता। इस अवेयरनेस के लिए अपनी जिंदगी का पहले बैठ के हम खुलासा लेने, मौलाना सुल्तान मोहम्मद सदातार फरमाते हैं कि तुम अगर हर रोज कर सको तो हर रोज करो, नहीं तो वीक में एक दिन, वीक नहीं बनती तो सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं महीने में एक दिन, एक कोने में बैठ के अपने घर के या कहीं बाहर चले जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बैठ के सोचो मेरी उम्र कितनी, इतनी, मुझे क्या करना है अगर छोटा है तो, और बड़ा है तो कर चुका है। अपनी जिंदगी का अकाउंट लो, भला मैं झूठ बोलता हूं? हां बोलता हूं। क्या ये अच्छी चीज है? दिल में से कॉन्शियस कहेगी नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, या मैं प्रॉमिस करता हूं कभी नहीं पालता, क्या ये अच्छी चीज है? अपनी बदियां ढूंढो, अपनी वीकनेस ढूंढो। कई आदमी होते हैं वो कभी भी टाइम पर नहीं आते। अगर वो आपको कहे मैं 10 बजे मिलूंगा तो वो 10:30 बजे तक तो पता भी नहीं होगा। ये भी एक बुरी आदत है। आदमी एक एक बुराई को अगर दूर करता रहे आस्ते आस्ते तो बहुत सी बीमारियां, बहुत सी खराबियां, बहुत सी तकलीफें खुद ब खुद मिट जाएंगी, और हमारे अंदर जो रूहानियत पैदा होती है वो इसलिए कि बदियों बुराइयों का बोझा घट गया तो रूहानियत ऊपर आएगी। मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूं, मेरी खुद की बनाई हुई एग्जाम्पल है, लेकिन एक्चुअली मैंने अपने घर में इस एग्जाम्पल को बना के देखा। एक टेबल लैंप रखो, सब बत्तियां बंद कर दो और ये टेबल लैंप के ऊपर एक काला कपड़ा कवर डाल दो, लाइट घट जाएगी। दूसरा कपड़ा डाल दो, लाइट और भी घट जाएगी। जैसे जैसे कपड़े ऐड करते जाओ तैसे तैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, लाइट घटती जाएगी। 40-50 कवर उसके ऊपर डाल दो, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह से एक एक कवर निकालते जाओ तो रोशनी बढ़ती जाएगी, अंधेरा घटता जाएगा। हमारे दिल के अंदर टेबल लैंप है, मौला का नूर है, जिसको हम रूह कहते हैं। हमारी रूह जो है वो तो रोशनी वाली चीज है, नूर है। गुनाह के काले कवर हम डाल के उसकी रोशनी को घटाते रहते हैं। हमारे अंदर सब कुछ है, हर बशर के अंदर, काफर भी है ना, उसके दिल के अंदर भी खुदा ताला ने नूर का अंश रखा है। हर इंसान को खुदा ताला ने यह बख्शिश दी है, लेकिन हम इसके ऊपर कवर डाल डाल के हम इसको छुपा देते। अगर हम गुनाह न करें तो हमारी रूहानियत बढ़ती जावे, हमारे अंदर रूहानी कुवत बढ़ती जाए। और यही चीज हमें समझनी चाहिए। इबादत, ऐ मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों मोमिनों, सिर्फ 4 बजे से 5 बजे तक बैठ के बंदगी करना ये काफी नहीं। बाकी के 23 आवर्स इस एक घंटे की बंदगी को बचाने के लिए है। एक बीज आपने छोटा सा प्लांट लिया, इतना टाइनी प्लांट है, जमीन में डाल के पानी दिया। अब आप उसको जो प्रोटेक्ट नहीं करोगे, उसको जो आप फर्टिलाइजर या कोई पानी नहीं दोगे तो वो जल जाएगा, मर जाएगा। रात को हम बंदगी करें, दिन को हम गुनाह करें, तो वो रात की बंदगी रहने वाली तो नहीं है। दिल को हमें पाक रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, आंखें साफ होंगे, कान अच्छे होंगे, यानी बदगोई, किसी की निंदा न सुने, उसमें भाग न लेवे। खाना खावे तो पाक खाना खावे, वो खाना खावे कि जिससे इंसान की दिमागी हालत जो है, यानी उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी होवे। ये मिर्ची मसाला सड़ी हुई चीजें हम खाते हैं, जबान को बहुत स्वाद मिलता है लेकिन हमारी रूह के लिए खराबी है। दूध पियो, दही खाओ, भाजी बकाला वेजिटेबल खाओ, फ्रूट खाओ। किसी वक्त मन आ गया तो थोड़ा सा आप चिकन है कि गोश्त है खा लो कभी कभी, महीने दो महीने में एक दफा। लेकिन जो इबादत करनी है दीनदारों, आपको इस रास्ते पे जाना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको छोड़ना पड़ेगा। बैतुल ख्याल की इबादत करने वालों के लिए गोश्त अच्छी चीज नहीं है। हमको 500 बरस पहले पीर हसन कबीर दीन माँ बाप ने कहा है कि गोश्त मत खाओ। क्योंकि अब मैं आपको बोलूं, एक बकरा है, जब एक कसाई ने बकरे को पकड़ गया तो बकरा फौरन समझ जाता है कि यह मेरे को मारने वाला है, तो उसका जो हार्ट है वो हार्ट एड्रेनल लिक्विड निकालता है, एसेंस निकालता है, कि जो तमाम हमारे उसके लहू के अंदर मिल जाता है। जब हम उसको मारते हैं तो लहू के अंदर वो खौफ और डर और फियर का जो एहसास था वो उसके बदन के अंदर फैल गया, इसलिए वो पॉइजनस हो गया। वो ऐसा पॉइजनस नहीं कि एक बोटी खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो टॉक्सिक मैटर है, बकरे को पकड़ा मारने के लिए उसके दिल के अंदर जो डर और फियर पैदा हो गया वो सारे बदन के अंदर फैल गया। लहू भले निकल गया लेकिन गोश्त में लहू तो है, वो टॉक्सिक मैटर उसकी फियर का जो हुआ था वो उसके अंदर है, हम वो खाते हैं। इसीलिए गोश्त में टॉक्सिन बहुत ज्यादा है और गोश्त जल्दी से सड़ भी जाता है। ठीक है, हम खाते हैं, हमको स्वाद आता है, लेकिन याद रखो अगर आपको बैतुल ख्याल में कुछ इंटरेस्ट है तो कुछ चीजें छोड़ दो, गोश्त बंद करो, इवन चिकन भी, मच्छी खाओ, क्योंकि मच्छी को हम मारते नहीं है, मच्छी को खुदा मारता है, जो ही वो पानी में से निकलती है वो मर जाती, और मच्छी के अंदर जो सर्कुलेशन ब्लड का है वो ऐसा नहीं है कि जैसे मुर्गी में या बकरे में है। इसके लिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमानों के अंदर है कि तुम वीक में थोड़ी मच्छी खाया करो लेकिन वेजिटेबल खाओ, और वेजिटेबल को भी बॉयल करके खाओ। घी तेल वाली चीजें हमको बड़ी उम्र के अंदर बराबर नहीं है, जवानी में चाहिए हमें, लेकिन कम से कम 45 45 या 50 ईयर्स की एज के बाद अपनी हैबिट्स को चेंज करो, बैतुल ख्याल के लिए, इबादत के लिए, मौला की मोहब्बत पैदा होने के लिए, अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। वो आदमी के जो मिर्च मसाला तीखा वगैरह चटनी बहुत खाता है, वो आदमी का जो स्वभाव है ना, वो क्विक स्वभाव होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, गुस्से में जल्दी आ जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, जल्दी गुस्सा आता है, ये इबादत के लिए ठीक नहीं, गुस्सा वैसे भी ठीक नहीं। तो जो खुराक है, हमारी फूड है, वो हमको हमारी इबादत में मदद करती है। सिंपल फूड, ऋषि मुनि जो जंगल में जाके इबादत करने के लिए ही रह जाते थे, वो क्या खाते थे? वेजिटेबल, दूध, दही। अपनी खुराक को सिंपल बनाओ, अपनी हैबिट्स को ऑर्गेनाइज करो, रेगुलेट करो उसको, रात को जहां तक बन सके जल्दी सो जाओ, ताकि सुबह आदमी 4 बजे उठे तो फ्रेश हो गए, 12 बजे सोने जाएगा वो तो उठ ही नहीं सकेगा, और कभी उठेगा भी तो इबादत में ही सो जाएगा, क्योंकि उसके बदन को आराम जितना चाहिए नेचुरल वो आराम नहीं मिला है। रात को 10 बजे, बहुत बहुत 10:30 बजे सो जाओ, सुबह जब भी आप 3:30 4 बजे उठो, हाथ मुंह धो, एक गिलास पानी पियो, क्योंकि रात की नींदर में पानी जो है वो घट गया है, इवेपोरेट हो गया है, सर्दी का जमाना है तो थोड़ा गर्म कर लो, लेकिन एक गिलास पानी पियो, इबादत करने से पहले एक गिलास पानी पियो। घर पे इबादत करनी है तो जमीन पे बैठ के करो, कुर्सी पे या पलंग पे नहीं, बन सके रोज जमात खाने आओ, नहीं बन सकता तो 2 दफा जरूर आओ, फरमान में है, सोमवार की सुबह को, शुक्रवार की सुबह को, जुमे की सुबह को, लेकिन घर पे इबादत करो, हाथ मुंह धो, पानी पियो, और वॉशरूम में हो आओ, जमीन पे बैठ के इबादत करो जैसे जमात खाने में हम बैठते हैं, और बन सके टेका मत लो, बीच में बैठो, अपनी स्पाइन को सीधा रखो, और इस तरह बैठो कि कम से कम आधा घंटा तक पांव हिलाने की जरूरत न पड़े। 10 मिनट के बाद पांव थक गए फिर ऐसा किया, ऐसे आदमी का ध्यान नहीं लग सकता। बिल्कुल सीधा बैठो, और जब आप सीधा बैठ जाओ तो इबादत शुरू करने से पहले 10 या 12 दफा डीप ब्रीदिंग करो, अपने लंग्स को भर लो, फिर आस्ते आस्ते हवा को बाहर निकालो, इसको कहते हैं प्राणायाम। क्योंकि रात भर हम सोए हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो पूरी तरह काम नहीं करते, हार्ट भी स्लो होता है तो हमारी सांस भी स्लो हो जाती है, तो हमारे लंग्स के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर टॉक्सिन बैठी है, कार्बन गैस हवा में जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे हमारे लंग्स भरे हुए हैं। इबादत में बैठने से पहले, जमात खाने में भी, इबादत करने से पहले सांस से अपने फेफ से भर लो, लंग्स को भर लो, फिर आस्ते आस्ते उसको निकालो, लेकिन देखो जब ये सांस लो या निकालो तो आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे आवाज नहीं होनी चाहिए, स्लोली स्लोली आवाज के बगैर 10 या 12 दफा ये प्रैक्टिस करो, तो इस बदन में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और यानी आदमी अच्छी तरह से जाग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए इसके बाद फिर आप आधे मिनट की, 30 सेकंड की एक दुआ मांगो, या मौला मैं नींद छोड़ के तुझे याद करने के लिए आया हूं, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी कमजोरियां नजरअंदाज कर दे यानी अवॉइड कर दे, मेरे पे रहम कर और मुझे अपनी मोहब्बत दे। ऐसी मौला के हुजूर में 30 सेकंड की दुआ मांगो और फिर आपका जो बोल है मौला ने दिया है उस बोल की प्रैक्टिस करो। ध्यान बोल की मीनिंग में रहे लेकिन सांस के साथ, जीभ हिलनी नहीं चाहिए, मुंह बंद रहे और जो जीभ है हमारी, टंग है, उसको ऊपर तालू में लगा दो। क्योंकि अगर हमारे मुंह की जो जबान तालू में जो नहीं लगेगी तो हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा पैदा होगा, पानी पैदा होगा, फिर हमको घड़ी घड़ी उतारना पड़ेगा। तो अपनी जीभ को ऊपर लगा दो रूफ ऑफ द माउथ के साथ, आंखों को ऐसा नीचा करो, इसके जो आंखों के जो हमारे आई लिड्स हैं उनको इस तरह से कवर करो कि नीचे से आंख खुली रह गए मगर हमको कोई दुखे नहीं। तो नीचे से ये दो पापड़, आईज को कंप्लीटली बंद मत करो, नीचे से थोड़ा खुला रहे लेकिन हमारी नजर सामने रहे ताकि हमें कोई चीज दिखे नहीं, और जो नजर है वो आपके बोल के ऊपर रहे लेकिन अंदर अवेयरनेस बोल के मीनिंग पर होनी चाहिए। और नॉर्मल सांस जो है, ब्रीदिंग नॉर्मल होवे। जैसे अभी देखो मेरा सांस चल रहा है, मैं आवाज कर रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं लेकिन सांस चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल हालत के अंदर बैठ के हमें इबादत करनी है। और ये जो बोल है उसको आहिस्ता आहिस्ता, याली 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 याली, ऐसा नहीं, याली। इस बोल का मीनिंग पर ध्यान होवे और सांस के साथ हमारा, लेकिन सांस में ध्यान नहीं जाना चाहिए, हमारी ये रिपीटेशन होवे, या अली। हाथ में तस्बीह नहीं होनी चाहिए, हाथ सामने ऐसा बांध के रखो, ऐसा छुटा रखो आपकी खुशी, लेकिन इस तरीके से बैठो कि कमर झुक ना जाए, ऐसा बेंड ना हो जाए, सीधे रहो। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के अंदर आहिस्ता 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 आपको इंटरनली इस प्रैक्टिस का सही तरीका मिल जाएगा, आपके बैठने की जो पोजीशन है, एंगल वगैरह है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह बैठूं तो आधा पौना घंटा एक घंटा निकल जाए, आप खुद ब खुद सीखना शुरू हो जाएगा। अंदर से मौला आपको इस बात की इंस्पिरेशन देगा कि हाउ टू सिट एंड हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। ये तरीके से सुबह की इबादत होवे, आदमी जब भी उठे तो इबादत की खुशी उसके चेहरे पे होवे, वो खुश होता है और बदन में एनर्जी होती है। डेढ़ दो घंटे के बाद वो एनर्जी जब भी डिप्लीट होती है ना, तो फिर आदमी को कभी कभी नींद आ जाती है, लेकिन इमीडिएटली जब इबादत के बाद सोना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जी फिर अंदर से घटती रहती है। लेकिन डेढ़ दो घंटे के बाद नींद आती है, कुर्सी पर बैठे बैठे ही थोड़ा सो जाओ, पलंग पे नहीं सोना, नहीं तो फिर 12 बज जाएंगे। सुबह की इबादत के बाद उस खुदा ताला का शुक्राना अदा करो, खाना पीना खाओ, रोजी रिजक पैदा करो, नेक आमाल के साथ रहे। भले इंसान को बहुत नफा नहीं मिलता मगर झूठ ना बोले, फरेब ना करे, चीटिंग ना करे, कोई भी ऐसी बुराई जो है ये रात को फिर इबादत को खराब करती है, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, बन सके दूसरों की सेवा करो, अपने माल में से दसवन चौखी करो, क्योंकि दसवन इस मुर्शिद का हक है। गुरु ने कहा है, अल्लाह ने कुरान में कहा है, वेदों में है, बाइबल में है, दुनिया की तमाम मजहबी किताबों में स्क्रिप्चर्स के अंदर दसवन की बाबत में जिक्र है, और हमको हमारी कमानी में से दसवन देनी चाहिए। जो आदमी दसवन नहीं देता या कम देता है तो उसको इबादत के अंदर इतनी खामी रहती है, इबादत में से जो फायदा मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसने गुरु की नाफरमानी की है और गुरु का हक खाया है। तो इबादत के साथ साथ हमारी तीन वक्त की दुआ और रोज जमात खाने की जो हाजिरी है, ये हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को एनहेंस करती है। हमारे लिए ये जो मैंने आज आपके सामने डिटेल्स के साथ एक प्रोग्राम के तौर पे मैंने जिक्र किया है, ये चीज दीनदारों आपको दुनिया और दीन दोनों सुख देगी। आपके दिमाग में कभी भी डर, भय, खौफ, फियर कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, नाउम्मीदी, निराशा नहीं होगी, मन घबराएगा नहीं, कोई भी जात का इंसान को फियर नहीं होगा, आराद होगा, खुदा ताला के ऊपर उसका भरोसा है और आसमान से उसके दिमाग में एनर्जी उतरती है, ये एनर्जी उसको दुनिया में काम आती है। भले वो आदमी मिलियनर नहीं बने, ना सही, लेकिन उसकी जिंदगी सुख की जिंदगी होगी, घर में भी प्रेम मोहब्बत होगी और उसके अंदर जो अच्छाइयां और टॉलरेंस और ऑनेस्टी है, अच्छाइयां जो है वो ज्यादा होती जाएंगी, उसकी ताकत रूहानी बढ़ती जाएगी, फिर वो जो मांगेगा वो मिलेगा, जो मांगेगा मिलेगा, जहां हाथ डालेगा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो कोई भी बदी बुराई में जाएगा नहीं। ऐसे दिल के अंदर लालच और ग्रीड नहीं होता, सेल्फिशपना नहीं होता, उसके दिल में हसद नहीं होता, जेलेसी वगैरह नहीं होती, किसी की एनिमोसिटी नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती, वो तो एक फरिश्ते की तरह दुनिया के अंदर घूमता है। मैं आपको एक पाठ सुनाता हूं। सतगुरु कह रहे पीरों के कलाम में मुझे जो मजा आता है वो इसलिए कि पीरों ने चुन चुन के सिलेक्ट कर करके मीनिंगफुल वर्ड्स रखे हैं। अभी सुनो। सतगुरु कह रहे जिन कलेजे बान लागो नेतनो, पीर शम्स माँ बाप के और पी सदरदीन के दो सलोके हैं। सतगुर कह रहे कि जिसके कलेजे में, जिगर में यानी लीवर में मौला की मोहब्बत का तीर लग गया, एरो लगा दिया, वो क्यूपिड है ना, यूरोपियन लोग उसको क्यूपिड कहते हैं, छोटा सा बच्चा है, आंखें बंद है, पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तीर कमान है, वो मार देता है, यानी कि जो क्यूपिड है वो अंधा है, इश्क अंधा है, और वो बाण मार देता है, बाण यानी एरो मार देता है। फिर जब ये बाण लगता है तो क्या होता है, दर्द होता है, बुलेट लगी है या बाण लगा है, छुरी लगी है, पीरों ने किसी जगह छुरी का भी जिक्र किया है, तो क्या होता है, दर्द होता है। तो दर्द, दर्द का मतलब क्या, जब इंसान को दर्द होता ना तो उसकी तमाम जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान होता है, अटेंशन होती है, वो दर्द में होता है। जहां दर्द लगा है, जहां पेन होता है, ऑल अटेंशन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन दैट पेन। इसलिए पीर ने यहां बाण मार के ये बता के हमको कह दिया कि जिसके कलेजे में मौला के प्रेम का बाण लगा, तेने दृष्टि अवर नव जाए, उसकी जो अटेंशन है وہ دوسری جگہ نہیں جا سکتی، مولا کی لو میں اس کی اٹینشن رہتی ہے. پھر فرماتے ہیں تینو پنڈ پھر مرت لوک ماں تینی سورتی آکاش جائے رے، بھائی سورتی آکاش جائے. اس کا جو باڈی ہے وہ دنیا میں پھرتی ہے، لیکن اس کا جو خیال ہے وہ آسمان کے اوپر ہے جہاں مولا رہتا ہے. مولا تو یہاں بھی رہتا ہے، یعنی یہاں اس کا مطلب ہے ہائر لیول میں جاتا ہے. تو وہ لوگ کے جو دنیا میں عابد ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، بھائی بہن ہے، کمانی کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر وہ پیور ہے. اور وہ پیور اس لیے ہے کہ اس کا خیال ادھر مولا کے پاس ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ مولا ناراض ہو جائے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو اس کو عبادت میں تکلیف دے وے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کو اس کو شرمندہ ہونا پڑے، ریگریٹ ہونا پڑے، ریپینٹنس کرنی پڑے، وہ کام نہیں کرتا. وہ ہمیشہ دنیا کے اندر سکھی اور آباد رہتا ہے. تو دیندارو، یہ اسپرچل اویئرنیس ہم کو 24 گھنٹے رہنے چاہیے. ہر کام کرتے وقت وی مسٹ بی اویئر آف دیٹ وٹ وی آر ڈوئنگ. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، نیک امیدیں پوریوں کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، گناہ سے بچنے کی طاقت دے وے. مولانا حضر امام دین اور دنیا کے اندر مددگار بنے، ہمیں اچھائی اور نیکی کی طرف لے جاوے. مولا دسوندی شکری تے پورا کرے، مولا فرمان برداری میں رکھے، دین دنیا کی نعمتیں دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے. سکھی آباد رہو. اے زندہ.